धारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे
शांति ओम शांति गुड मॉर्निंग आज 14 अगस्त है, साकार बाबा की मुरली। बाबा ने कहा कि जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो नरसिंह नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं, यानी वो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं। तो ऐसी आत्माओं का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, उनकी क्रिमिनल आई नहीं होगी, कभी भी उनको विकारी ख्यालात नहीं आएंगे। और अगर अभी तक भी क्रिमिनल दृष्टि होती है तो फिर 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं, ये उनकी निशानी है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही चार्ट रखने के बारे में, कि रोज अपनी जांच करो, चार्ट रखो कि हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, पाप कर्म तो नहीं किया, कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। तो बाबा ने कहा कि मुख्य है आंखों पर जीत पाना, आंखों पर जीत पालेंगे तो ही कर्मातीत बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा आंखें ही देती हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करते हैं वो बाबा के धर्मराज के रजिस्टर में ऑटोमेटिकली नोट हो जाता है, लेकिन फिर भी साकार में बाबा आते हैं तो साकार में बताना है, तभी वो खबरदारी देते हैं। फिर ये कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिलाए, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए। तो बाबा ने कहा कि बलिहारी उस शिव बाबा की हैं जो हमें गोविंद जैसा बनाते हैं, तो वही सद्गुरु हैं ना, वो केवल गोविंद को देखना नहीं है। भक्ति मार्ग में तो गोविंद माना श्री कृष्ण, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है ना, तो सिर्फ उनका साक्षात्कार करना है, देखना है नहीं, लेकिन उस गोविंद जैसा बनना है। तो शिव बाबा आकर के ही गोविंद जैसा बनाते हैं। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नरसिंह नारायण बनने का होगा। जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनका विशेष पुरुषार्थ नरसिंह नारायण बनने का होगा, अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित चैन पाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है, पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। तो शांति धाम और सुख धाम दोनों कौन सी दुनिया है? पुण्य की दुनिया, वहां पाप होता नहीं। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति इंसान नहीं है रावण। बाबा ने कहा रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं ना, उसका पुतला हर साल बना करके जलाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए? किनारा किया है तो हम संगम, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। ब्रह्मा भी नहीं है तो और कोई देहधारी भी सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। वह है ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, जब आत्मा परम धाम में थी तो विदेही है, देह आत्मा को भी नहीं है, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं, नरक भी स्थापन होता है। स्वर्ग को शिव बाबा स्थापन करते हैं तो नरक फिर रावण बनाता है। तुम्हारा सुख धाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुख धाम, तो कलयुग अंत तक आते आते पूरा दुखी हो जाते हैं। भल कितने भी करोड़ पति पदम पति हों, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। दुनिया तो पतित है ना, तो वो तो है तो इसी दुनिया में। यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। अब ऐसा थोड़ी है कि करोड़पति दुखी नहीं होते, उनको भी कई प्रकार के दुख होते हैं। तो बाबा ने कहा भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। दुनिया में तो इस बात को बिल्कुल भी मानते नहीं, कहते हैं इसके बिगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान हे पतित पावन, इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। भगवान को ही पुकारते हैं, कहते हैं। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं, स्वर्ग है ही पावन दुनिया। तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। निश्चित है कि जो 84 जन्म लेंगे वो लक्ष्मी नारायण के साथ आएंगे सतयुग में। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, तो पूरे 9 लाख होते हैं शुरू से। लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी है, तो फिर बाबा ने कहा कोई एक थोड़ी 84 जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मणों में भी नंबर वार हैं, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। कोई राजा रानी बनते हैं कोई प्रजा, अब सतयुग में भी प्रजा तो है ना, तो बाबा ने कहा कि नंबर वार हैं तो कुछ प्रजा भी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है, तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। ये नई राज की बात बाबा ने आज बताई है। वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे, जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है, क्योंकि आंखों से देखते हैं तभी दृष्टि जाती है, जब तक देखा नहीं तब तक दृष्टि जाएगी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही धोखा देती हैं, आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। आंखें क्या है? आत्मा की खिड़की। तो आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है, ब्रह्मा बाबा में तो डबल आत्मा है, बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है, बाप आत्मा को ही समझाते हैं। कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य, तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। हमारा किनारा हो गया है, बाकी है पतित दुनिया, लेकिन अभी हम पावन बन रहे हैं। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, अब पार तो जाएंगे सतयुग में। परंतु बाबा कहते हैं परंतु क्या, वहां पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है। ऊंच पद बिना पवित्र बने नहीं मिल सकता, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। अभी तुम जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हैं। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं, है ना। क्योंकि कलयुग को बाबा क्या कहता है, कांटों का जंगल, तो एक दो को दुख दिए बिना रहते नहीं है। तो बाबा ने कहा एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं, कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया। अब दुख क्यों देते हैं, क्योंकि विकारों के वश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई में क्रोध आया तो क्या करेंगे, फिर हाथ चलाया, मारपीट करते हैं, मुख से तो बोलते ही बोलते हैं कलयुगी दुनिया में, लेकिन हाथ से भी मारपीट कर देते हैं। ब्राह्मण तो अभी ऐसा नहीं करते, लेकिन दुनिया में तो ये सब करते हैं। तो बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पापात्मा है। कोई ऐसा करेगा तो बाबा क्या कहेंगे उसको, पापात्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, अब तक पाप करते रहते हैं। अगर ब्राह्मण बनकर के भी ऐसा करते हैं तो भी पाप कर रहे हैं। यह तो नाम बदनाम करते हैं, जो गुस्से वाले हैं वो सबसे ज्यादा नाम बदनाम करते हैं, क्योंकि गुस्सा प्रत्यक्ष हो जाता है ना, दिखाई देता है ना कि ये बोल रहे हैं, इतना जोर जोर से लड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि नाम बदनाम करते हैं, सब क्या कहेंगे, कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या। निश्चित है ना, दुनिया वाले सोचेंगे ये कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं, तो ये लक्षण है क्या कि भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि नाम बदनाम करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें, भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया, वह यह भूल की याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें। एक तरफ तो योग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उल्टे कर्म भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये ठीक है, बाबा पूछ रहे हैं ठीक है अगर याद भी कर रहे हैं और साथ साथ देह अभिमान के वश कर्म भी कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें रोज चार्ट लिखने के लिए कहते हैं कि हमारा अपने ऊपर ध्यान जाए कि कौन सा गलत कर्म आज हमसे हुआ जो बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं है। ये चक्र कैसे फिरता है यह तो बहुत सहज है, एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, एक बार सुन लिया आराम से दूसरों को सुना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं, बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। जब साकार बाबा थे तो बच्चे अपना चार्ट लिखकर बाबा को भेजते थे, तो बाबा को लिखते हैं बाबा हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं, गुणों की खुशबू होती है ना। टीचर बनना तो सेकंड का काम है, टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। जो पढ़ाने वाले बाबा तो कई बार कहते हैं ना कि भले महारथी हैं लेकिन याद में कच्चे हैं। तो इसीलिए कहा टीचर बनना तो सेकंड का काम है, लेकिन टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। ये सारा मदार किस पर है? याद पर। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो, सभी को बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा के तो सभी बच्चे टीचर हैं। रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती? अपने मैनर्स करेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। हाँ, ये तो बहुत साधारण सी बात समझते हैं, हाँ, लेकिन बाबा हमें कर्म की गति बताते हैं कि जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। भले ही छोटी सी चोरी है, लेकिन वो भी पाप गिना जाएगा। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। मधुबन को बाबा इंद्रप्रस्थ कहता है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ न लगा सके। दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं ना, पुराने जमाने में बहुत ऐसी छुआछूत थी, आजकल तो इतना नहीं है, तो किसी को भी अगर ऐसे टच कर दिया तो फिर वो नहाते थे। तो बाबा ने कहा कोई उनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन और यह पतित है। बल यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, क्योंकि जो भी सन्यासी हैं, महामंडलेश्वर अपने को समझते हैं, उन्होंने दुनिया के हिसाब से तो विकार का संन्यास किया है, इसलिए अपने को पवित्र समझते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है, सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं। सतयुग में तो ऐसे पतित मनुष्य होंगे ही नहीं। बाबा ने कहा है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है, सभी पवित्र हैं, कोई भी पतित वहां है नहीं, तो एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना। क्या क्या जाना हमने? रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, सब हम देवता बनने वाले हैं भविष्य में, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो आज चलन के बारे में बाबा ने काफी बताया है। तो बाबा ने कहा अगर चलन जरा भी बिगड़ती है तो फिर ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए, है ना। वो एक क्रिमिनल आई की बात अलग है, लेकिन उसके बाद अगर अवगुण दृष्टि भी है तो ये भी तो बुरी दृष्टि है। किसी के प्रति नफरत की दृष्टि है वो भी बुरी दृष्टि है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना की दृष्टि रहे तो अच्छी दृष्टि किसको कहेंगे। तो बाबा ने वो कहा है दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। गुस्सा तो वैसे भी लग जाता है, एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा ऐसा हो जाता है। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिला। तो बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। अब साक्षात्कार कौन कराता था, ओम मंडली में कौन साक्षात्कार कराता था? शिव बाबा कराते थे, ब्रह्मा बाबा थोड़ी कराते थे। तो बाबा ने कहा बलिहारी तो उसके, आप में से किसी को हुआ है श्री कृष्ण का साक्षात्कार? हाँ, अगर किसी को हुआ है तो हाथ उठा सकते हो। हाँ उठाओ, लंबा लंबा हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, भाइयों में किसी को नहीं हुआ? नहीं, एक को हुआ है पीछे, और बाकी माताएं तीन चार हैं जिनको हुआ है। तो बाबा ने कहा बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो, साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, मतलब प्राप्ति हुई क्या? तो केवल साक्षात्कार से प्राप्ति या प्रालब्ध नहीं बनती। प्रालब्ध कैसे बनेगी? पुरुषार्थ से। तो बाबा ने कहा सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, मीरा कोई स्वर्ग में तो आने वाली नहीं है। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, तो ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं। फिर बाबा ने चार्ट की बात कही। आज ज्यादातर पूरी मुरली चार्ट के ऊपर है। तो सब चार्ट लिखते हैं, जो लिखते हैं, लिखते हैं मतलब विधि पूर्वक सोने से पहले चार्ट लिखते हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो लिखते नहीं है मुख से बाबा को, मतलब मन ही मन चार्ट देते हैं सोने से पहले, अच्छा वो ज्यादा है। तो फिर बाबा को क्या करना है, अब चार्ट लिखना है। तो बाबा ने कहा कि चार्ट में लिखो, बाबा सबको राय देते हैं। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, तो चार्ट लिखेंगे तो पता चलेगा ना सारा दिन में क्या हुआ। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे तो किसी को देखने के बाद ही चलेंगे। मानो किसी से हमारी कोई बातचीत हुई है पहले, वो जब तक नहीं दिखता है तब तक ठीक है, और जब दिख जाएगा तो तुरंत व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाएंगे, सारी रील पुरानी घूम जाएगी। तो देखा ना, देखा तब शुरू हुआ। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो, यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा की ऑटोमेटिक मशीनरी है, कर्म किया भगवान को देखने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, जो भी करते जा रहे हैं वो अपने आप ही उसमें नोट होता जाता है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे ना। इसीलिए सुनाने की विधि रखी हुई है कि बाबा को सुनाना है, जो भी हम कर रहे हैं बाबा को बताना है। तो बाबा ने कहा तो खबरदार करेंगे, क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे, क्योंकि वैसे ही फिर वाइब्रेशन होते हैं तो वायुमंडल पर प्रभाव आता है। यहां बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है, माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत किसके ऊपर करनी पड़ती है, मन के ऊपर। हाँ, क्योंकि मन नहीं टिकता है, मन ही भागता है इधर से उधर। तो बाबा ने कहा बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। जैसे मधुबन में आते हैं तो पूरा दिन ज्ञान बरसात होती है, फिर भरपूर होकर के बाबा कहते हैं बादल भरकर जाएंगे और फिर जहां अपने अपने स्थानों पर जाएंगे वहां वहां बरसेंगे। तो यहां से हम भरकर जाते हैं पूरा। तो बाबा ने कहा कि समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे, शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। दुनिया में तो ऐसे ही कहते ना लोग, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, ऐसे ऐसे भगवान को शिकायत करते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। हाँ, शिव बाबा करते हैं क्या, कौन करता है, हमारे ही अपने कर्म है, चाहे हम पीछे से लेकर आ रहे हैं चाहे हम अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी सामने आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारे ही कर्मों की वजह से। तो बाबा ने कहा भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, जिनको ऐसा लगता है भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया वो फिर नास्तिक हो जाते हैं, हम क्यों याद करें ऐसे भगवान को। तो बाबा ने कहा लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, क्योंकि हम क्या सुनाते हैं चक्र के उसमें क्या समझाते हैं, कब आते हैं दूसरे धर्म वाले, द्वापर युग के बाद। तो सतयुग में कौन आए, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले। तो फिर वो सोचते हैं और कहते हैं कि क्या भगवान से भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या, दो आंखें माना पक्षपात करने वाली बात की, भाई भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जा रहे हैं, ले जाते हैं, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। अब सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक मत है, तो सतयुग में तो अनेक धर्म हो नहीं सकते, तो फिर अनेक धर्म तो द्वापर युग में ही होते हैं। स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं, अगर स्वर्ग में भी करोड़ों हो जाए तो वो स्वर्ग रहेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा पहली पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो, ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है। दूसरे धर्म वाले भी जब ये ज्ञान समझेंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये तो ठीक बात कहते हैं। हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को, सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं, अपनी अपनी रीति से करते हैं, पर याद तो एक को ही करते हैं ना, उसी निराकार को ही सब याद करते हैं। तो बाबा ने कहा याद तो सब करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बहुत थोड़े हैं। संदेश तो हम सबको देते हैं लेकिन बाबा के बच्चे तो बहुत थोड़े बनते हैं, कोटों में कोई भी, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए। अब कोई तो निकलता नहीं है, इतनी मेहनत इतना खर्चा हम क्यों करें। तो बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है, ड्रामा में था किया, कहां निकलते भी हैं कहां नहीं निकलते हैं, दोनों ही बातें हैं, कहां निकलते हैं कहां नहीं निकलते हैं, पर कोई एक भी निकला तो बाबा ने उसके लिए ही समझो ये प्रदर्शनी लगवाई, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं ना। आगे चल आएंगे ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे, अभी तो देखो कितने कितने आ गए, अब लाखों में करोड़ों में बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। तो सारे दिन में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए, बाबा को लिखकर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। तो जो भी किया है वो बाबा को लिखकर, इस जन्म का तो हमको पता होता है ना, तो बाबा ने कहा लिखकर दे दो तो हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं, बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना देखेंगे, चार्ट से पता चलेगा। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को हम देखें तो सही, हाँ जिसका चार्ट इतना अच्छा है उसको हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप भी लौकिक में भी माँ बाप उन्हीं बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है, बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। तो आज बाबा ने कितना इम्पोर्टेंस दिया है चार्ट लिखने को। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, केवल लिखने की बात नहीं है, फिर अपने को सुधारना भी है। चेकिंग के साथ साथ क्या करना है, चेंज भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरा है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दें, इनकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। दुनिया में तो हद के आधार पर खुशी होती है, जैसे मनपसंद चीज मिल गई, मनपसंद व्यक्ति मिल गया, मनपसंद सफलता मिल गई, जैसा चाहते हैं वैसा नाम हो गया, ये सारी चीजें खुशी का आधार बनती हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में किस आधार पर खुशी है? बाबा और बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उसके आधार पर हमारी खुशी है। जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं तो मंजिल से दूर हो जाते हैं ना? वैसे हाईवे पे चल रहे हैं और कहाँ चले गए? गलियों में, तो फिर मंजिल से दूर हो गए। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो तो सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। बाबा तो हमेशा कहता है, बाबा के लव में लीन रहेंगे, मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगेगी? दादी जी की विशेषता है, ईश्वरीय सेवा का चांस लेने और देने वाली रूहानी चांसलर। दादी जी हर सेवा में सदा आगे रहती और बाबा के महावाक्य सदा याद दिलाती कि सेवा का जो भी चांस मिलता है उसे प्यार से ले लो तो रूहानी चांसलर बन जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सदा सेवा में हाँ जी करके सेवा करना। सेवाओं में कोई आगे बढ़ता तो दादी जी उसे देखकर खुश होती, लेकिन वर्तमान समय ब्राह्मणों पर माया दो प्रकार से वार करके चांसलर बनने नहीं देती है। एक वार होता है देहधारियों में फंसना और दूसरा वार होता है ईर्ष्या के रूप में। इसको चांस मिला, मेरे को क्यों नहीं, यह मैं करना ईर्ष्या की बोली है। ईर्ष्या ऊंची स्थिति से नीचे गिरा देती है। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है तो प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। अभी हमारे बीच में शशि दीदी भी पहुंचेंगे।
ओम शांति। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सतगुरुवार है, हम सब मिलके प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। लेकिन अभी हमें एक समाचार मिला कि बाबा की एक अनन्य रत्न, जो आप सभी जानते हैं कि गॉडलीवुड के हरिलाल भाई, उनकी लौकिक माता जी जो कि 65 साल से ज्ञान में बाबा मम्मा दादियों की पालना ली हैं, कल रात 2:30 बजे अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में गई हैं। और दूसरी बात, आज हमारी आदरणीय लच्छू दादी का भी दिन है, तो इसलिए हम भोग से पहले 1 मिनट खास उन माता जी के प्रति और लच्छू दादी जो कि भोग के दिन यहाँ पर सदा हाजिर रहती थी, भोग तैयार करके लाना, भोग रखना, अव्यक्त बाप दादा को जब भोग स्वीकार कराते थे थाली लेकर के आती थी बहुत प्यार से और बहुत सच्चाई सफाई से करती थी। तो ऐसी दादी जो हमारे सामने त्याग और तपस्या की मूर्त रही, तो उनके निमित्त 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद भोग लगेगा। ओम शांति। आज सत गुरुवार है, हम सब प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद जो बाबा सुनाएंगे वह सबको सुनाया जाएगा और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की होगी और 2 लाइनें बट्टी की टीचर्स बहने इस तरफ भाइयों की तरफ आएंगी और उसके बाद बट्टी की माताएं भी यहाँ आएंगी और मट्टी की माताएं यहाँ जहाँ दूसरा कैमरा रखा है वहाँ पर अमृत पीने के लिए आएंगे और अन्य बहनें 2 लाइनों में वहाँ पर अमृत पीने के लिए आएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कल हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है, कल भारत देश का झंडा लहराया जाएगा, तिरंगा लहराया जाएगा। और दूसरी बात कि जन्माष्टमी है 16 तारीख, पहला ऐसा सोचा गया था कि 15 तारीख को करेंगे लेकिन अभी के प्लान अनुसार जन्माष्टमी का कार्यक्रम 16 तारीख मुरली के बाद बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और जन्माष्टमी का कार्यक्रम रहेगा। पहले इस तरह से चेंज किया गया था कि आबू के स्कूल के बच्चों का यहाँ पर कार्यक्रम था लेकिन उसको दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए पहले कल का भोग रखना था लेकिन जन्माष्टमी का भोग परसों ही यहाँ पर मुरली क्लास के बाद होगा। और अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास जाएंगे बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए। हमारे पास यहाँ पर कई भाई बहने आए हैं जो कि अनेकों के निमित्त भोग लगाने के लिए, यहाँ दीपा बहन को आप जानते हैं, हमें बहुत बाबा की लाडली, बचपन से ही बाबा की गोदी में सेंटर पर पली, बचपन से छोटी सी थी सेंटर पर ही रहती थी, तो इनकी लौकिक माता जी तो अनेक सेवाओं में व्यस्त रहती थी, बहुत ही पक्का निश्चय बुद्धि। उन्होंने भी कुछ समय पहले अपना भौतिक शरीर त्यागा है, उनके निमित्त और अन्य कई आत्माओं के निमित्त भोग हैं, उन सब के निमित्त भी बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा और बाबा को उनके प्रति भी याद प्यार देंगे, तो इसलिए सभी की याद प्यार बाबा के पास पहुंचेगी, दी जाएगी। अच्छा, जो भाई बहने अभी भोग के समय बाबा के पास सूक्ष्म वतन जाएंगे वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, सबको जाना है, कोई कहे हम नहीं जाएंगे तो बाबा तो सबके सामने ही भोग स्वीकार करते हैं। बाबा ने ना कभी अकेले खाया है, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद स्वीकार किया, तो अभी भी बाबा क्या करते हैं वतन में बच्चों को पहले से ही भोग स्वीकार कराते हैं। और बाबा को अच्छा लगता है कि मेरे लाडले बच्चे हैं, बहुत समय के बाद मिले हैं, तो बाबा कहते जितनी खातरी करूं उतनी कम है, पूरे कल्प के अंदर तो बाबा मिलेगा नहीं, द्वापर में तो बाबा क्या है भावना का भाड़ा दे देगा, लेकिन जो अभी मिलन है वो मिलन तो पूरे कल्प में कभी होता ही नहीं है, इसलिए सबको वतन में खुशी खुशी जाना है। ऐसा नहीं कि कह दिया तो चलते हैं, कि ऐसा भी ना हो कि कहा है तो हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन हर एक ऐसा पहुंचे जो आपके मन में प्रश्न है, जो बात आपको बाबा से करनी है बाबा उसका जवाब अभी ही आपको देंगे, लेकिन ध्यान से सुनना है कि बाबा आपसे क्या बात कर रहे हैं, उसका भी बच्चों को ध्यान देना है। अच्छा, अभी हम सभी चलते हैं बाबा की ओर, बाबा के पास। फिर से बता रही हूँ, भोग के संदेश के बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की वहाँ होगी, और इधर 1 लाइन होगी टीचर्स बहने, जो भी बट्टी की टीचर्स बहने हैं या अन्य टीचर्स बहने, वो इस तरफ आएंगी। और टीचर्स बहने अमृत पीने के बाद फिर बट्टी की माताएं भी इधर आएंगी, और फिर बाकी बट्टी की माताएं यहाँ पर अमृत पियेंगी, और बाकी जो अन्य टीचर्स बहने हैं, अन्य माताएं हैं, वो उस तरफ 2 लाइन लगेंगी अमृत पीने के लिए। और सबको लाइन में आना है, आवाज नहीं, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में। 5 मिनट में ही अमृत का पूरा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ओम शांति।
की डोर में मोती पीरों के प्रेम की
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सत गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते क्या देखती हूँ, एक तरफ बहुत सुंदर सेलिब्रेशन चल रहे थे और भारत की आज़ादी के निमित्त कई प्रकार के सेलिब्रेशन और भारत के इतिहास के एक बहुत सुंदर ऐसी गैलरी बनी हुई थी और सबके अंदर बड़ा उमंग और बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था और बाबा दूर से उस दृश्य को देख रहे थे तो मैं भी देख रही थी कि भारत के ऐसे वीर जिन्होंने त्याग और बलिदान से एक ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया और बाबा ने कहा कि ये ड्रामा के अंदर ये भारत की महिमा का एक विशेष पार्ट है और सब को ऐसे ही बाबा दृष्टि दे रहे थे। सबके पास लाइट की किरणें पहुंचती थी और उनके स्वरूप बदलते जा रहे थे। दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, थोड़ा दूरी पर सतयुगी दुनिया के बहुत सुंदर नज़ारे थे। उसमें राजाओं महाराजाओं की एक सभा लगी हुई थी और कहीं पर गार्डन और नेचुरल ब्यूटी, फरिश्ते, देवताएं, पशु पक्षी अपने संपूर्ण स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने देखते हुए आ सब बच्चों को इमर्ज किया। बाबा ने कहा, बच्चे आपको अपनी स्वर की यादें स्मृति पर हैं, तो सब बच्चे ऐसे उन यादों में खो जाते हैं बहुत खुशी में। और जैसे कि गोप गोपियां रास करती हैं, वो सब के सब रास करने लगे और एक कुछ सेकंड के लिए तो जैसे कि सब के सब अपनी नई दुनिया में ही पहुंच गए हैं। तो बाबा भी मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों के लिए अब वो समय दूर नहीं कि अपनी नई दुनिया में जा कर के राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप देख रहे हैं कि बच्चों को अभी कौन से पुरुषार्थ में रहना है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, कौन से पुरुषार्थ, तो सबका वो स्वरूप आदि देवी देवताओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। सब तख्त पर विराजमान थे और वो इतना सुंदर दृश्य था कि सब के सब विराजमान हैं। और बाबा भी उसको देख करके बहुत मुस्करा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, उस तख्त से कुछ बच्चे जो सजे हुए थे वो उतर करके दूसरे तरफ चले जाते थे, तो उनका जो राजाई पोशाक था वो एकदम सिंपल हो जाता था। कुछ बच्चे ऐसे थे उनको समझ नहीं आता था कि उनका ये तख्त क्यों हिल रहा है। कुछ ऐसे बच्चे थे वो अपने तख्त को ही संभालने में लगे हुए थे। तो इतना होने के बाद
फिर बाबा ने सब बच्चों को सामने इमर्ज करते हुए कहा कि बाप हमेशा बच्चों को तख्त नशीन बनाते हैं और तख्त नशीन देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बीच बीच में बाप के जो दिल तख्त हैं वहाँ पर विराजमान होते हुए भी बाहरी प्रभाव के कारण उस तख्त से उतर करके एक साधारण रूप में आ जाते हैं। और दूसरा, बच्चों को कभी कभी माया की सही पहचान न होने के कारण उनकी अवस्था जो है कभी ऊपर और कभी नीचे होती रहती है। तो माया के सही रूप को बच्चे, कई बच्चे हैं जो अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, और कई बच्चे हैं जिनको बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। तो आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो अपना भविष्य स्वरूप भी सामने दिखाई देगा, और अभी की वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति के आधार से बाप के साथ अनेक प्रकार के अनुभव और अनेक प्रकार की अनुभूतियां कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को क्या करना है, फिर से बाबा ने वो इष्ट रूप दिखाया, और इष्ट रूप से जैसे उनके सामने भगत हैं और भगत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अपने इष्ट स्वरूप को पक्का करके उस स्वरूप में टिक करके उस स्थिति में रह करके भक्तों की पुकार सुन उनका भी कल्याण करना है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को निर्विघ्न बन सभी को, पूरे ब्राह्मण परिवार को निर्विघ्न स्वरूप बनने के लिए सहारा देना है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी कभी कभी बच्चे विघ्नों से घिर जाते हैं तो उनका रास्ता उनको क्लियर नहीं समझ आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी जो नई दुनिया में जाना है ब्राह्मण परिवार को निर्विघ्न स्वरूप बनाना है, और भक्तों की पुकार के अनुसार उन्हें अंजलि दे करके बाप के सहारे का उनको अनुभव कराना है। फिर बाबा ने क्या किया कि सब बच्चों के हाथ में एक झंडा दिया, तो झंडा जैसे दिया तो सब बच्चे लेकर के बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा कल चारों ही तरफ भारत का तिरंगा लहराया जाएगा, लेकिन अब बाबा बच्चों से चाहते हैं कि कौन सा ऐसा झंडा लहराना है। तो जो झंडा था उस झंडे के अंदर बीच में एक बहुत हीरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस हीरे से चारों तरफ लाइट निकल रही थी और वो लाइट पूरे विश्व के अंदर फैल रही थी। तो बाबा ने कहा कि अभी समय है बाप की प्रत्यक्षता का, और अभी समय है सारे विश्व के अंदर बाप का पहचान देने का, और हर एक आत्मा ये समझे कि यही मेरा बाबा है, यही है, यही है जिसकी तलाश थी। तो वो झंडा जैसे दिया वो झंडा ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था, आसमान की ओर पहुंचते ही आसमान में भी एक इंद्रधनुष बन गया, और इंद्रधनुष से इतनी सुंदर किरणें निकल रही थी और चारों ही तरफ लाइट एंड लाइट, तो लोगों को लाइट के साक्षात्कार हो रहे थे और लोग ये देख रहे थे कि इतनी लाइट और शक्ति कहाँ से आ रही है। तो बाबा ने कहा अभी वह समय है कि बच्चों को बाप की प्रत्यक्षता का और बाप बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए बच्चों को हर प्रकार से संपन्न बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को खुद भी निर्विघ्न बन पूर्व सभी को निर्विघ्न बनाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सबको वतन में भोग स्वीकार कराते हुए फिर से बाबा ने हरेक के हाथ में झंडा दिया और झंडे के अंदर चारों ही तरफ बहुत चमकते हुए सितारे और बीच में लाइट थी। बाबा ने कहा ये सब मेरे बच्चे पूरे विश्व के चमकते सितारे आशाओं के सितारे हैं और सारे विश्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आज सदा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे। जैसे झंडा जितना ऊंचा बढ़ता जा रहा था बाबा ने कहा सब बच्चे सदा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे। फिर तो बाबा को मैंने बताया जिन जिन के भोग थे बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि देते हुए हर एक को वरदान दिया और सबको याद दिया। ओम शांति।